तो आप सब लोग स्थिति में हैं, श्रवण करने की स्थिति में है या नहीं, या थक गए हैं, या भूख लग रही है, या फिर नींद आ रही है? तो आज हमारा पहला दिन है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी धाम में। तो पहले दिन में काफी इनसे हमें गुजरना पड़ा, कष्टमय स्थितियों से। और वास्तव में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन हम देखते हैं, आज उनका तिरुभाव है। और मैंने दोपहर में उनके बारे में बोलना शुरू किया था, उस हर समय बाधाओं की शुरुआत हो गई थी। कलयुग का एक लक्षण है, क्या लक्षण है कलयुग का? कलो सर्व साधन बाधका। कलयुग में कोई व्यक्ति साधना करने का प्रयास करता है तो कई प्रकार की बाधाएं, चैलेंजेस आ जाते हैं, हर समय रुकावटें आती हैं। तो कले का एक काम ही है क्या करना, हमें तपाना। जैसे किसी का अनुभव नहीं हो रहा था कि वास्तव में संसार दावानल क्या होता है, किसको किसका अनुभव हुआ आज? थोड़ा सा अनुभव हुआ होगा, एक तो ट्रेन में और दूसरा जब आप जगन्नाथ की ओर जा रहे थे, है ना? किसको आनंद आ रहा था? वास्तव में थोड़ा सा हम अनुभव करते हैं कि भगवान की ओर हम जाते हैं तो जो रास्ता है, ऐसे नहीं कि वो आपके लिए क्या है वहां मुलायम कमल के फूल और पंखुड़ियां बिछे हुए हैं और बहुत सरलता से आप भगवान की ओर जाओगे। नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि हर समय कृष्ण की ओर जाने के लिए व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, किस चीज के लिए? हर स्थिति का सामना करने के लिए। हम जैसे प्रहलाद महाराज का जीवन हम देखते हैं, ध्रुव महाराज का जीवन है, हरिदास ठाकुर का है, द्रौपदी का है, पांडवों का जीवन है। तो भगवत भक्ति का मतलब ही है कि भक्ति तो बहुत सुखमय है, जिसका वर्णन कृष्ण ने गीता में किया है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, कि ये जो भगवत भक्ति है ये बहुत सुखमय है, जॉयफुल है, आनंद देने वाली है। और इसकी जब प्रैक्टिस करते हैं इस प्रैक्टिस में भी आनंद है। तो ऐसी भगवत भक्ति करने के लिए हम हमेशा ये होना चाहिए कि हमेशा कष्टमय स्थिति को झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। और वास्तव में द्रौपदी का जीवन हम देखते हैं कि कृष्ण क्यों उसके पास पहुंचे। कृष्ण द्वारका में थे, द्वारकाधीश के रूप में, और यहाँ द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो कृष्ण वह भोजन ही कर रहे थे। तो द्रौपदी तो हम सुनते हैं हर बार की कितना वो तैयारी कर रहे थे, बहुत अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो फाइनली फेल हो जाती हैं। और वो फिर क्या करती हैं? हे कृष्णा, हे यादव, ऐसे ही द्वारकाधीश अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए पुकारने लगती हैं। तो रुक्मिणी कहती है कि अरे अरे कृष्णा, आप अभी क्यों नहीं जा रहे हो, इतना चिल्ला चिल्ला कर वो पुकार रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, उस ऐसा वो रोड मेरे लिए बना रही है। ये जब नाम उच्चारण कर रहे हैं तो द्रौपदी जब कष्ट में स्थिति में और विवलता वश, अभी हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें कोई इमरजेंसी नहीं है, हम बड़ा बिल्कुल नॉर्मल रूप से स्वयं देखते हैं कि हरिनाम करना कहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, किसी ने बोला हुआ है इसलिए मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी कोई इमरजेंसी पता नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये रुक्मिणी, जो रुक्मिणी कहते हैं कि द्वारकाधीश कृष्ण अब आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कृष्ण कहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये जो रुक्मिणी है ये मेरे लिए रोड बना रही है मेरे जाने के लिए, और किस चीज का वो रास्ता है, उसके आंसुओं से भरा हुआ, आंसुओं के जल से क्या है भरा हुआ वो रोड है, उसकी मैं पूर्ति देख रहा हूँ, वो बन रहा है, तब मैं निकलूंगा। तब वास्तव में इसे क्या सीखते हैं, और इसी चीज को प्रभुपाद ने बहुत सरल भाषा में कहा कि कृष्ण को कॉल करना, भगवान तो एक लाउड कॉल के भूखे हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि जो नाम का उच्चारण है ये वैसे करना चाहिए, किस प्रकार से, जो बच्चा खोया हुआ या दूर है अपने माँ के लिए जैसे रोता है, चिल्लाता है, या उस एटीट्यूड को धारण करता है। हाँ, ये नहीं कि हम चिल्लाते रहे जब करते समय, उस बच्चे को मोड़ को हम धारण करें, और उसी मोड़ को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मुझे आपसे क्या हो रहा है, विरह की अनुभूति हो रही है, आपके बिना मैं निवास नहीं कर सकता, एक क्षण भी मुझे कई युगों के समान लग रहा है। तो ऐसा जब कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा, और द्रौपदी ने जो भगवान के लिए जो रास्ता बनाया था, किस चीज का वो रास्ता था, उनके आंसुओं के द्वारा, तो भगवान एक लाउड कॉल के भूखे हैं। इसलिए जनरली हम पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु या हरि भक्ति विलास में कि भगवान के विग्रह के जब पट बंद होते हैं, कर्टन बंद होते हैं, टेंपल क्लोज होता है, तो उस समय व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब आप एक एक्टिविटी करते हो और कृष्ण स्वयं अंदर अपने गर्भगृह में बैठे होते हैं और उनके जो भक्तगण हैं उनसे सेवा स्वीकार कर रहे होते हैं, या तो सुबह उनका अभिषेक हो रहा है या शाम को शयन का व्यवस्था हो रही है, तो कृष्ण बिजी है वहां, और जब आप उनको एक प्रणाम करते हो तो उसको कहा जाता है स्मॉल एक्टिविटी बट लाउड कॉल। दिखने में तो बहुत छोटा कार्य है कि अरे क्या परिक्रमा कर ले, चार या तीन या दो या एक, ये कोई बड़ा काम थोड़ी है, दो परिक्रमा कर लेना या तीन परिक्रमा कर लेना या फिर जाकर एक प्रणाम अर्पित करना, लेकिन कृष्णा इस छोटी से छोटी चीज को क्या करते हैं, देखते हैं कि ये स्मॉल एक्टिविटी लेकिन लाउड कॉल है कृष्ण को बुलाने के लिए, और कृष्ण तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इवन कोई व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, कर्टन बंद है, तो कृष्ण का स्नान कर रहे हैं, अभिषेक कम हो रहा है, तो भगवान ये हो जाते हैं। अभी देखो आप कुछ कार्य कर रहे हैं और उस समय कोई आया और आपको प्रणाम कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाओगे कि नहीं। तो उसी प्रकार से कृष्ण भी उस चीज को देखते हैं। तो इसलिए जो द्रौपदी आदि का जीवन है, पांडवों का जीवन है, ये तो कृष्ण की ओर जा रहे हैं सारे लोग। हम तो एक भक्त का जीवन ही है, प्रभुपाद की बुक का नाम भी है, क्या है, ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर। हाँ, तो कृष्ण की ओर जाना बहुत सरल भी है और बहुत अधिक कठिन है। हाँ, ये दोनों चीजों के लिए हमें तैयार होना चाहिए कि भगवत भक्ति में आने वाली जो बाधाएं हैं या कई प्रकार की जो विपदाएं हैं, कष्ट हैं, उसको झेलने के लिए व्यक्ति को सदैव तत्पर होना चाहिए। और जब कृष्ण देखते हैं कि मेरा सेवा करने में, मेरे भक्ति में लगा होकर कोई व्यक्ति इस तपस्या को स्वीकार कर रहा है और स्वयं आने वाले कष्टों को झेल रहा है, तो कृष्ण का हृदय द्रवित होने लगता है। और उसी को ही ब्रह्मा ने जब कृष्ण की प्रार्थना की दशम स्कंद के 14वें अध्याय में तो वो कहते हैं कि आपके भगवत भक्ति में, आपकी सेवा में लगकर कोई व्यक्ति कष्ट आते हैं उनको सहन करते हुए बिना किसी हेतु और बिना किसी रुकावट के आपकी सेवा में लगा रहता है, तो हे कृष्ण वो आपके धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। ये उसी प्रकार है, भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको कहा कि तुम्हारा सेवाय दुख है जर सहित परम सुख। हे कृष्ण, आपकी सेवा में जो दुख है वो दुख दुख नहीं महसूस होता, उस दुख में भी क्या है, ट्रांसेंडेंटल आनंद छुपा हुआ है, दिव्य आनंद है भगवत सेवा में। भौतिक जगत में आप देखते हैं सांसारिक कष्ट आते हैं तो कितना व्यक्ति परेशान हो जाता है, सुसाइड करने लगता है, कितना विपदा से मतलब बहुत विचलित हो जाता है। लेकिन भगवत भक्ति में भक्तों के जीवन में भी देखते हैं कि कष्ट आते हैं तो लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके कारण भक्तों के जीवन में आने वाला कष्ट भी उनको कष्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि वो कष्ट किससे जुड़ा हुआ है, कृष्ण से। यही खासियत है। भौतिक संसार में जो कष्ट हम अनुभव कर रहे हैं वो हमारे मोटिव्स हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के स्वार्थमय उद्देश्य हैं, जिसके कारण वो कष्ट हमें आनंद नहीं महसूस होता। वो कष्ट क्या है, बहुत अधिक विपदा का विपदा हमें महसूस होती है। लेकिन भक्तिमय जीवन में हर चीज, चाहे वो कष्ट है या सुख है, वो दोनों कृष्ण से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों चीजें हमें क्या करती है, दिव्य आनंद देती है। अभी माधवेंद्रपुरी को गोपाल ने भेजा था, कहा भेजा था जगन्नाथपुरी, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नाही जाए, गर्मी लग रही थी वहां, हम भी सुबह से गर्मी में परेशान थे, हम भगवान भी वो भगवान कहते गोपाल कह रहे पुरी आमार ताप नाही जाए, हे पुरी गोसाई माधवेंद्र पुरी। पुरी शब्द के कई अर्थ है, पुरी का मतलब है आपको प्रसादम में मिलने वाली पुरी, हर पुरी का असली मतलब है निवास, निवास जहाँ होता है हम पुरी या पुर, जैसे अंतपुर कहते हैं, जैसे राजा के महल में दो होता था, एक बाहर का और एक अंतपुर, मतलब जो स्त्रियां रानियां वगैरह निवास करती थी, राजा का पर्सनल महल, तो वैसे ही पुरी का मतलब है निवास स्थल। तो भगवान गोपाल कहते हैं, गोपाल कहे पुरी अमर तापन आई जाए मलय चंदना तवे से ले पाए, कि आप मुझे क्या करो, मलय देश का चंदन लेके आओ और उसके द्वारा मेरा ना जो ताप है वो जा सकता है। तो माधवेंद्र पुरी गोपाल की सेवा के लिए अब वृंदावन से चलते हुए जगन्नाथपुरी आते हैं। हम तो अभी थोड़ा ही चले थे, कितना चले थे हम, कितना 10 मिनट मैक्सिमम, यहाँ से 5 मिनट मेन रोड पर मुंडली छतर और वहां से अब तेजी से चल रहे थे, वैसे आपको बुला बुला के थक जाएंगे लेकिन यह बुलाने की आवश्यकता नहीं हो रही थी, स्वयं ही भाग रहे थे, एक्सटेसी इसको कहते, एक्सटेसी में आ गए थे सारे। तो हम इतना थोड़ा सा कष्ट हमें इतना भारी लग रहा था, उससे ऐसे लग रहा था कि अरे शरीर त्याग दो ऐसे लग रहा था, मतलब कुछ कभी कभी तो ये विचार आ रहा होगा कि अरे दामोदर प्रभु को हुआ क्या है, हाँ इन दोनों ने हमें क्यों चलाया, चप्पल क्यों नहीं पहने, कई बार गलत होता है, हम सोचते कि जो लीडर्स है उनको फॉलो करते, चप्पल नहीं पहनेंगे, सीनियर भक्तों ने नहीं पहना है, मैं कैसे पहनू, मैं आज सोच रहा था। तो फिर हम तैयार होना होगा आने वाले कष्टों को झेलने के लिए। तो यहाँ हम थोड़े चले नहीं तो हम इतना विपदा से ये हो गए थे, भक्ति का सारा चेहरे में 12 बजे हुए थे, पता ही चल रहा था कि फीके हो गए हैं चेहरे, कोई आनंद का लक्षण नहीं, जगन्नाथपुरी में आए धाम में तो, तो वो भगवान की इच्छा है। रोज तो गाते हैं आश्लेषवा पादरताम पिनस्तुवा अदर्शना मर्मताम करोतुवा यथा तथा वा विददातु लंपटो मत प्राण नादस्तु सयेव नापरा। गाने में कितना अच्छा लगता है जब इसका ट्रांसलेशन पढ़ते तो और अच्छा लगता है, लेकिन जब हम हमारे साथ ये आज घटित हुआ है नहीं, सुबह से लेकर शाम तक ये श्लोक हमारे लिए है, और वास्तव में ये श्लोक किसने बोला है, श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के लिए, वही एक अधिकारी है। एक्चुअली श्रीमती राधिका का सर्वश्रेष्ठ स्थान इसलिए है क्योंकि वो उनका एग्जाम्पलरी लाइफ है, चाहे आप मुझे आलिंगन करें या मरमाहत करके मुझे दूर भगा दें, फिर भी आप मेरे लिए प्राणनाथ हैं। चाहे आप दर्शन ना दें, आज कोई कोई सबको लगा होगा क्या रे ये डिवोटीज ने क्यों ले गए, इतने धूप में तो चलाया चलाया, उसमें इनको पता नहीं किसी को पूछना चाहिए, वहां हमें ले गए धूप में चलाया भी, हम बच्चे हैं, माताएं हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, और ले तो ले गए, कोई केयर नहीं है, कोई आगे कोई पीछे, और फिर देखा कि इतनी भीड़, कोई दर्शन नहीं हो रहा है, और फिर सोचा कि पहले तो इन लोगों ने बोला कि प्रसाद खिलाएंगे आपको जगन्नाथ का फिर प्रसाद, और वहां जाने के बाद दोनों चीजें नहीं, दोनों उत्सव नहीं, नो नेत्र उत्सव और जीवा उत्सव, ना जीवा के लिए आनंद मिला ना आंखों के लिए आनंद मिला। तो ऐसी स्थिति हमारी हुई थी। तो वास्तव में जगन्नाथ की परम इच्छा है, तो हमें तुरंत समझना चाहिए, और ये भावना को सीखने के लिए भक्तिमय जीवन में, चाहे मुझे समय में प्रसाद मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं अगली यात्रा में नहीं जाऊंगा इन भक्तों के साथ, मिस मैनेजमेंट कोई हद होती है पहले
सारी अंदर की बातें बता
इस प्रकार से ये बहुत आवश्यक चर्चा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्योंकि हम भगवत भक्ति में ढीले हैं, तो इस प्रकार से जब घटित होती है कई घटनाएं हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं, भक्तों का संग छोड़ते हैं। पहली चीज होती है माया का काम ही है कि आपको अलग कर देना, ताकि आपके गला गला क्या कहेंगे, गला दबाना इजी हो जाएगा। अंग्रेजों का ये था क्या, डिवाइड एंड रूल। तो माया देवी क्या करती है, क्योंकि संग शक्ति कलयुग में केवल व्यक्ति भक्ति में तभी बच सकता है जब वो स्वयं अपने आप को सदैव भक्तों के बीच में रखे। सदैव बीच में डाल दो, चाहे मुझ में अंदर उत्साह है या नहीं है, नाम करने की इच्छा हो रही है, श्रवण करने की हो रही है नहीं हो रही है, सेवा करने की इच्छा है नहीं है, लेकिन क्या करो, आप अपने आप को भक्तों के बीच में फेंक दो, जस्ट थ्रो, और फिर देखो चमत्कार। इसके लिए हमेशा उत्साहित होना चाहिए, अपने आप को फेंक दो भक्तों के बीच में। तो माया क्या करती है, माया सदैव ढूंढती है कि कैसे मैं क्या करूं, एक एक भक्त को अलग करूं, क्योंकि कलयुग में किसी और चीज में शक्ति नहीं है। हाँ, कलयुग में एक ही चीज में शक्ति है, वैसे हम रोज गाते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान के नाम में तो शक्ति है ही, लेकिन जब वही नाम हम अकेले जब करते तो शक्ति महसूस होता है नहीं, तो जब तुलसी के साथ भक्तों के बीच नाम संकीर्तन करते, हरि नाम का जप करते, तो लगता है कि अरे कितना शक्ति है भगवत नाम में, और वास्तव में वो शक्ति कहाँ कैसे महसूस हो रही है, क्योंकि हम भक्तों के बीच में हैं। तो माया सदैव इस चक्कर में लगी रहती है कि कैसे मैं एक दूसरे को अलग करूं, भक्तों के बीच में कुछ ऐसी चीज डालो ताकि वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो फिर हम अलग होते हैं तो सरलता से माया के चपट में आते हैं, और हम भगवत भक्ति रूपी जो धन है वो हमारे हाथ से छूटने लगता है। तो इसलिए कई विपदाएं आ सकती हैं, हम चाहे जितना मर्जी अरेंजमेंट करें, जितना मर्जी मैनेज करने का प्रयास करें, लेकिन सुप्रीम मैनेजर कौन है, कृष्णा है। इसलिए ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारण। प्रभुपाद ने वही किया, अमेरिका गए और अपने आप को उनके अंदर डाल दिया, नाचाओ 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 मोरे कृष्णा, बाप मुझे जैसा चाहे नाचाओ, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं। तो उसी प्रकार से जब हम यात्रा जादी में जाते हैं, तो यात्रा से हम कई चीजों की शिक्षा ले सकते हैं, कई चीजों को हम सीखते हैं अपने पर्सनल उन्नति के लिए, और हर चीज को हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखें, भक्तों के दृष्टि से हम देखें, तो फिर क्या पाएंगे हम, नए नए हीरे, आध्यात्मिक हीरे प्राप्त करेंगे। उसका मतलब है कि नई नई शिक्षाएं हम प्राप्त करेंगे, जिन शिक्षाओं के द्वारा हम अपने भगवत भक्तिमय जीवन में स्थिर हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए यात्रा में निकलने का मतलब ही है। अब जैसे मैं कल शरीर की तुलना रथ से कर रहा था, तो मुझे अचानक ऐसे विचार आया था, तो लेकिन देखा कि कितना टफ है हमारा रथ, यहाँ तक पहुंचने में कितना कठिन हुई है ना। इजी था क्या? टू टायर में बैठ के थोड़ा इजी लग रहा था उस समय के लिए, लेकिन जब उसका असली रूप, जैसे पोतना तो जब आए ब्रज में, तो कितना, जब ये यशोदा रोहिणी और जो प्रभावती आदि जो गोपिकाएं थी, सीनियर गोपिकास, इन्होंने देखा, अरे ब्यूटीफुल लेडी, ये तो लक्ष्मी से भी अधिक सुंदर है, और हाथ में कमल लेकर सुंदर आभूषणों को धारण करते हुए गजगति हाथी के समान सौंदर्यवान चलते हुए जब आए, तो सबके लगा कि हमारे जो नए नए कृष्ण हैं, इनको आशीर्वाद देने के लिए आई है लक्ष्मी, इनको देखने के लिए आई है। और यशोदा ने कहा, जाओ 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 अंदर जाओ, क्योंकि उनको 90 साल की आयु थी, शायद पता नहीं, बहुत ओल्ड हो गई थी यशोदा, तब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, 90 नहीं लेकिन बहुत ओल्ड हो गई थी। तो उनको लगा कि इतने लंबे समय के बाद पुत्र प्राप्ति हुई है, तो सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। वो ड्रामा आपने देखा कल, मायादास एंड कृष्णदास, तो मायादास पेट साफ नहीं होता तो क्या करता है, फेसबुक में अपडेट करता है कि अपडेट कर रहा हूँ कि मेरा पेट साफ हो जाए। हाँ, तो क्या होगा, सबको पता चला गया तो सबकी दुआएं लगेगी और दूसरे दिन पेट साफ हो जाएगा। तो यशोदा माता को भी लगा कि सारे ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो मेरा जो बेटा है उसके ऊपर कोई विपदा नहीं आएगी। तो ये जो पोतना है, शुरुआत में तो इतनी सौंदर्यवान थी, इतनी आकर्षक थी, और लग रहा था कि सारे आशीर्वाद इसके हाथों में ही है। हाँ, लेकिन जैसे वो पहुंची और तुरंत कुछ ही क्षणों में उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, तो वैसे आज हमारे साथ टू टायर में हुआ था, पोतना के समान। दो दिन से तो पोतना ने हमें अपनी गोद में खिलाया, सुलाया, नहलाया, है कि नहीं, कितना आनंद आ रहा था, सब भूल गए थे हम, किसको लग रहा था कि मैं फरीदाबाद से हूँ। वैसे होता है मटेरियल वर्ल्ड में, हमें लगा कि मेरा जन्म इधर टू टायर में हुआ है, और पूरा बचपन देर जा रहे हैं, जस्ट जॉयफुल, कितना अच्छा लग रहा था, प्रसाद भी आ रहा था, कोई टेंशन हो रहा था प्रसाद पे, किसी को कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, हम मैंगोज आ रहे हैं, स्वीट्स की वर्षा हो रही है, बोतलें थी, कौन सी माउंट कुछ तो था नाम था, माउंट कैलाश। तो ऐसी सब स्थितियां थी, हाँ, पोतना बड़ी गोद में हमें ना सुला रहे थे, और मैं पोतना का आज सुबह थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, हाँ, उसने अस्थि रूप दिखाया। तो इस प्रकार से मटेरियल नेचर है, भौतिक स्थिति है, तो इसलिए हमें सदैव भगवत भक्ति के कार्यकलापों को नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा तत्पर रहना चाहिए है कि मेरे जीवन में भगवत भक्ति जीवन में, ऐसे नहीं कि सब कुछ ठीक चलेगा। और हम भक्तों का एक भ्रम क्या है, जनरली हम टेंपल डिवोटीज को भी देखते हैं, मैं कई सालों से पर्सनली भी और डिवोटीज को भी देखता हूँ, तो हर इवन टेंपल डिवोटीज, बल्कि उनके पास इतना समय होता है, हाँ ठीक है, बहुत बिजी होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं अभी ना थोड़ा भी बिजी हूँ मैं, बहुत सारी चीजें, थोड़े दिनों के बाद ना फिर प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ूंगा, आजकल जरा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, सेवाज है, बर्डन है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी नहीं, बाद में पढ़ूंगा, बाद में, तो पूरा जीवन चला जाता है, प्रभुपाद के ग्रंथों का स्पर्श होता नहीं है। वो कहते थोड़ा ठीक हो जाए लाइफ, भक्ति में आने के बाद भी वैसे ही होता है, भौतिक जीवन में भी व्यक्ति कहता है कि अभी थोड़ा ठीक होने दो ना, अभी शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, या बच्चों का जरा सेटल्ड होने दो, धन की थोड़ी कमी है, थोड़े कुछ महीने जाने दो, तब थोड़ा भक्ति को ना बड़ा सीरियसली लेंगे, कहते सोचते कि नहीं हम अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लेना, अभी नहीं, सब इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी, ये काम है, वो चीजें हैं। तो भक्ति में आने के बाद भी हम वही वैसे ही करते हैं। तो हर स्थिति में, हर समय मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है कि कभी स्थिरता नहीं होगी। क्या होगा वो ग्राफ, हमेशा ऊपर नीचे होगा। लेकिन हमें अपने भक्तिमय जीवन की जो प्रैक्टिसेस है, विशेष रूप से श्रवण कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति नो ठाकुर हरिनाम चिंतामणि कहते हैं कि मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। तो भगवत भक्ति में मुख्य पथ में यदि कोई भक्त चलता है तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त होगा। मुख्य पथ क्या है? श्रवण कीर्तन जले कराये सेशन, श्रवण कीर्तन को गंभीरता से लेना। आप श्रवण कीर्तन को गंभीरता से लोगे तो कृष्ण आपको सीरियसली लेंगे। कौन चाहता है कि कृष्ण मुझे सीरियसली ले? हम चाहते कि नहीं चाहते? हाँ, फिर कृष्ण सीरियसली लेंगे तो आप रह नहीं पाएंगे। भगवान सीरियसली लेते तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, परीक्षाएं। हरिष्यत तद् धनं क्षणे, क्षण में ही उसका सबसे पहले पॉकेट, भगवान का धन पॉकेट में होता है। हरिष्यत तद् धनं क्षणे, प्रभुपाद को कृष्ण ने सीरियसली लिया। आप चाहते ऐसे सीरियस होना? कोई नहीं चाहता। तो प्रभुपाद ने पूरा जिम, उनके गुरु महाराज ने कहा कि ग्रंथों की छपाई करो। उन्होंने कहा अरे बिरले, पहले प्रभुपाद लेकिन कहते मुझे लग रहा था कि बिरला के जैसे ना पैसे कमाऊंगा और फिर ग्रंथों पर छापूंगा। तो मैंने इलाहाबाद में, लखनऊ में शायद ना फैक्ट्री लगाई और बहुत सारे नौकर वगैरह थे। तो कुछ दिनों में देखा कि वो फैक्ट्री खत्म हो गई और बहुत सब कुछ नष्ट होने लगा। तो प्रभुपाद नाराज नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। प्रभुपाद को तुरंत एक श्लोक याद आया, क्या है? यही है कि भगवान 11वें स्कंद में कहते भागवतम के हरिष्यत तद् धनं क्षणे, में उस जिस व्यक्ति पर कृपा करता हूँ उसके धन को क्या करता हूँ? हरण करता हूँ। धन का मतलब ही है अटैचमेंट, जिससे हम बहुत अधिक आसक्त हैं। तो वास्तव में हम यदि चाहते हैं कि कृष्ण हमें सीरियसली ले, तो उसके लिए हमें कृष्ण को क्या करना होगा? खुद सीरियसली लेना होगा। कृष्ण को सीरियसली लेने का मतलब है कृष्ण का ये जो श्रवणम है, कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला का कीर्तनम है, इसको हम गंभीरता से लेते हैं तो कृष्ण हमें सीरियसली लेने लगते हैं। सीरियसली इस प्रकार से भी लेने लगते हैं कि कृष्ण देखते हैं कि ये जो जीव है ये बहुत तड़पड़ कर रहा है, मेरी ओर आने का सिंसियर इच्छा कर रहा है, तो भगवान उसको फैसिलिटी देते हैं, भक्तों का ऐसा संग प्रदान करते हैं, शास्त्र आदि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम एन मामो भयान्तिते। ये कृष्ण सीरियसली लेते मतलब क्या करते हैं? कई एस्पेक्ट्स है, उसमें एक एस्पेक्ट है कि भगवान हमें ऐसा बुद्धि देते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि, कि जिसके द्वारा हम कृष्ण की ओर भागते हैं। तो भगवान हमें सीरियसली लेते मतलब वो हमें एसोसिएशन प्रदान करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर और जो भी फैसिलिटी नीडेड है कृष्ण की ओर जाने के लिए, वो कृष्ण हमें प्रदान करते, प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम कृष्ण को सीरियसली लें। तो इसलिए यात्राओं में चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में हमें क्या होना चाहिए? हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। कृष्ण देखते हैं कि आप कितना उनके लिए या उनकी ओर जाने के लिए तत्पर हो, क्योंकि यात्राओं में आने का मतलब क्या है कि जो भौतिक यात्रा इतने लंबे समय की है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। ये जो रथ ये अच्छा नहीं है, आपके खुद के रथ यात्रा घुमाते रहो, ऑलरेडी हम अपने रथ यात्रा कहाँ से घुमाते रहे, कोई खींचने वाला है नहीं, आपके रथ को खींचने वाला कोई है ही नहीं। व्यक्ति सोचता है वो इस प्रकार से जीवन जीना शुरू करता है। ये जो सॉन्ग है बहुत आइडियल है, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेय नाना विध व्यथा तुम्हारे चरणे आसिया ची आमी पलिब दुखेर कथा। भक्ति नो ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्णा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, संसार में आने का एक ही कारण है कृष्ण को हम भूल गए हैं। तुम्हारा चरण है, तुम्हारा चरण है आसी अच्छी आमी बलिब दुखेर कथा। कृष्ण कहते हैं, भक्तिनो ठाकुर कहते हैं कि आपके चरण कमलों में मैं आया हूं और क्या करने आया हूं, अपने दुख की कथा को बोलने आया हूं। इस भौतिक जगत में ये जो रथ यात्रा आपने खुद की है उसको खत्म कर दो एक बार, तब आप कृष्ण के रथ यात्रा में असली से भाग ले सकते हो। अभी हम पूरा अपनी रथ यात्रा कब से शुरू किए, किसको पता है कब से शुरू हुई है, बताइए खुद की रथ यात्रा कब से शुरू हुई है? जन्म जन्मों से। यहाँ प्रभु आराम से नहीं, आराम से रथ चलेगा फिर। कब से शुरू किए आपने रथ यात्रा? ऐसा मत लगाइए, वहां कृष्णदास कविराज ने कहा है अनादि बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। कब से शुरू किए? अनादि काल से, मतलब उसका आदि नहीं है। कब से ये यात्रा हमारी शुरू हो गई है और हम इस रथ को खींचने के लिए बहुत यात्री तैयार कर रहे हैं, है ना? और हम सोचते उनके ऊपर निर्भर रह जाऊंगा, मेरे जो मित्रगण है, संबंधी है, बच्चे आदि हैं, पत्नी है, पति है, हम मेरे जो फॉलोवर्स है, इन सब पर हम निर्भर होना शुरू होते हैं। कहते हैं मेरे रथ को ले जाएंगे, व्यक्ति को चिंता है ना कि अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, है कि नहीं? जनरली कोई भी व्यक्ति है जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो एक ही चिंता है उसका रथ कहा तो पहुंचे, स्मशान तक ले जाने वाला कोई होगा या नहीं होगा, या फिर जब बूढ़ा हो जाएगा तो उसके रथ की देखभाल करने वाला कोई होगा या नहीं होगा, ये हमारी सिचुएशन है। लेकिन वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण पर हम निर्भर हो जाते हैं, तो कृष्ण इस रथ यात्रा का पूरा दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। योग क्षेम वहां में हम, ये जगन्नाथ स्वामी उसी के लिए हैं। एक डिवोटी थे, आपने वो स्टोरी सुनी है, गीता पंडा, क्या नाम था उनका? गीता पंडा, जगन्नाथपुरी में। वो गीता पंडा नाम से पता चलता है कि क्या काम होगा उसका, गीता पढ़ना बस। कृष्ण भक्ति में आप एक कार्य को पकड़ो, लग जाओ उसके पीछे, लग जाओ लाइफ तो बिल्कुल पीछे लग जाओ, परफेक्शन है। कृष्ण भक्ति में जीवित रहना है तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज में मेरा झुकाव है कृष्ण के कार्यकलापों में, उसमें लग जाओ, रममान हो जाए, हृदय को डालो, सब कुछ वहां डालो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बिना किसी मोटिव के, और उस चीज से कृष्ण के पर्टिकुलर उस सर्विस से अटैचमेंट डेवलप करो, परफेक्शन है। तो वैसे ही ये जो गीता पंडा था, गीता पंडा रोज भगवद गीता पढ़ता था, चाहे जो मर्जी हो जाए, सूर्य उगे या ना उगे, सूर्य अस्त हो या ना हो, घर में भोजन है या नहीं है, ब्राह्मण था, भगवद गीता के लिए फिक्स था, रोज भगवद गीता का अध्ययन करता था, और घर में बच्चे चिल्लाते रहते थे, पत्नी रोज रेडियो ऑन हो जाता था, पत्नी का बंद ही नहीं होता था रेडियो, मिर्ची तीखी होती है ना मिर्ची, जस्ट जोकिंग। तो फिर वो ब्राह्मण पढ़ता जा रहा है, पत्नी वहां से ना दांत खा रही है, चिल्ला रही है, करते क्या हो, दिन रात ग्रंथों को लेके बैठते रहते हो। हमारे कॉन्ग्रेगेशन डिवोटी है, वो मुझे कह रहे थे मैं जब घर में पढ़ना शुरू करता हूँ तो पत्नी ना आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है उसकी, तो मुश्किल है, उसको लगता है कि टाइम क्यों नहीं देता मेरे लिए। मैंने कहा भक्ति छुपा के करो, ऑफिस नहीं है तभी तो बोलो ऑफिस में बॉस ने बुलाया है, मंदिर आ जाओ या हमारे बेस में आ जाओ, पढ़ाई करो, श्रवण करो, भक्ति को छुपा के रखो हमेशा। अपने जो भी बहुत नजदीक के लोग हैं उनको भी उजागर नहीं करो। नरोत्तम दास ठाकुर ने ये कहा है प्रेम भक्ति चंद्रिका में, अपनी जो जप माला है और अपना जो भगवत भक्ति है, साधना है, वो किसी को रिवील नहीं करते फैलना चाहिए। हाँ देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कितना बड़ा साधक हूँ। तो ऐसे ही ये जो गीता पंडा है वो नियमित रूप से कुछ भी हो जाए भगवत गीता जो कृष्ण से अभिन्न है उसका उच्चारण करते रहता था, और घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। पत्नी ने कहा जरा जाओ कुछ भिक्षा वगैरह तो मांग के ले आओ, तो वो गया। तो कहते ठीक है अभी बहुत पीछे लगी है तो करता हूँ, कुछ काम करता हूँ, जाता हूँ भिक्षा लेने के लिए। तो वो गए भिक्षा लेने के लिए, कई जगहों में गए उनको भिक्षा ही नहीं मिल रहा था। अभी वापस आए बहुत गुस्सा आ रहा था, कृष्ण ने बोला ही कैसे ऐसे, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से भजन करेगा उसके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कृष्ण करेंगे। तो कहता है नहीं कुछ डाउटफुल है, कृष्ण के शब्द कुछ गलत है, वो अपने वचनों का पालन नहीं करते हैं। कृष्ण बोलते बड़ी मीठी मीठी बातें हाँ हमें फंसाने के लिए, हाँ लेकिन करेंगे नहीं कुछ। तो उन्होंने क्या रेड पेन ले लिया और उस पर अंडरलाइन किया ये गलत है, कैसे हो सकता है, असंभव है, और गया बाहर। कहते मुझे खुद प्रयास करना पड़ेगा अभी, ये कृष्ण के वचन क्या है अनुचित है, उचित नहीं है। एक्चुअली भगवत गीता के एक एक स्टेटमेंट पर हमारा श्रद्धा हो जाए तो हमारा प्रेम कृष्ण के लिए तुरंत उजागर हो जाएगा। जहां जहां कृष्ण ने गीता में हर चीज बोली है एक एक शब्द में फेथ हो जाए, दृढ़ श्रद्धा। क्या है वो श्लोक, श्रद्धा शब्द कहले दृढ़ सुदृढ़ निश्चय है, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कि ये फेथ हो जाए कि कृष्ण भक्ति करूंगा तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत रेयर है एक्चुअली ये श्रद्धा लाना। मुझे याद है मैं फुल टाइम होने से पहले बहुत सोच रहा था, अरे क्या होगा मेरे माता पिता का, मेरे भाइयों का, मेरे बहन का, और नहीं व्यक्ति चिंता करता है, लगता है कि मेरे बिना उनका जीवन ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, अपने आप को करता या भोगता मानना। तो हर एक व्यक्ति वही सिचुएशन है। तो मैं जब सोच रहा था कि क्या करो क्या नहीं करो, तो प्रभुपाद का कुछ महीने हो गए थे ज्वाइन नहीं प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हुए, तो भगवद गीता एक दिन पढ़ रहा था, तो भगवद गीता का पहला चैप्टर में 34 श्लोक है शायद या कोई, तो उसके तात्पर्य में एक श्लोक आता है, उसमें वो तात्पर्य में प्रभुपाद ने वो श्लोक कोट किया है। वो श्लोक है देवर्षि भूतापतरणाम पितृणाम नाय मृणेश राजन, और वो आखिरी लाइन है गतो मुकुंद परिहरते कृतम। वो श्लोक पढ़ा, उसका अनुवाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें था कि आप मुकुंद की शरण ग्रहण करते हो तो आपको फिर किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप सबके ऋणों से मुक्त हो जाते हो, माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, साधुओं का ऋण, सबका कर्जा किसी का नहीं, आपके पास आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो मैंने कहा ये परफेक्ट श्लोक है, वो श्लोक ने मेरे बदल दिया। मैंने कहा अभी ठीक है, सही समय आ गया है। वो श्लोक पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं अभी क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो उसी प्रकार से इस गीता पंडा ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, ये कुछ गलत बोला गया है कृष्ण ने, तो फिर उन्होंने अंडरलाइन किया रेड पेन से। तो फिर वो चला गया कि नहीं अभी मैं करता हूँ, खुद करूंगा, कृष्ण के भरोसे में नहीं रहना चाहिए। हम भी सोचते हैं ना, है ना, कृष्ण के भरोसे में मत रहो ज्यादा। तो फिर ये गया, पत्नी घर में थी, तो कृष्ण बलराम जो मंदिर में निवास कर रहे हैं, भगवत गीता में रेड पेन से अंडरलाइन करना मीन्स क्या करना, कृष्ण के ऊपर आप क्या कर रहे हो, खरोच कहेंगे ये कर रहे हो, जोर से एक प्रकार से मार रहे हो। तो फिर कृष्ण और बलराम तुरंत चिंतित हो गए, हाँ, उन्होंने क्या किया, तुरंत ही हाँ, दो बोरे उठाए जिनमें सारा ग्रोसरी का सामान भरा हुआ था और वो गए गीता पंडा के घर में। ओ गुरु माँ, गुरु माँ मीन्स गुरु पत्नी जो है, हाँ, गुरु की जो पत्नी है वो भी हाँ, गुरु के समान है, तो गुरु माँ कहते हैं। तो ये गए, दोनों बालक बहुत सुंदर लग रहे थे, फटे टूटे वस्त्र पहने थे, अब पसीना बह रहा था हाँ, और दो बोरे उन्होंने अपने उसमें पीठ के ऊपर डाले हुए थे। तो गए और चिल्ला रहे हैं, गुरु माँ को बुला रहे हैं, तो वो आ गई बाहर। क्या हुआ, ये ना गुरु जी ने भेजा है ये सब चीजें, गुरु माँ को दुख लगा रही है, छोटे छोटे बच्चों के सर के ऊपर पेट के ऊपर, अभी ये छोटे छोटे बच्चों का जनरल होता है कितना 15 साल के होंगे, तो ऐसे छोटे बच्चों के वेश में आए थे कृष्ण बलराम, बहुत बड़ा बोझा उनके पेट पर लाके पूरा रोते हुए कैसे तो डाल दिया उनके घर में। और उन्होंने कहा अभी ये सब सामान, उन्होंने कहा किसने भेजा है ये, अभी ना गीता पंडा जी ने भेजा है, गुरु जी ने भेजा है हमारे। उन्होंने कहा उनको कोई दया वगैरह आई कि नहीं, छोटे छोटे बच्चों के पेट पर इतना बड़ा बड़ा सामान उन्होंने दे दिया है। फिर उन्होंने कहा, गुरु माँ को बड़ा दुख लगा, उन्होंने जैसे वो डाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पीठ में क्या है, निशान है, तो बहुत दुखी हो गए और अपने पति को, पति के बारे में बहुत डांट कर बोलने लगी, और आने दो उनको घर आ गए, फिर तो बताते हैं। तो ऐसा वो सोच ही रहे थे तो गीता पंडित एक पूरा अपना वो ले गए थे, भिक्षा दे ही, भिक्षा दे मांग, ब्राह्मण का काम ही है भिक्षा ग्रहण करना, संग्रह नहीं करना। ब्राह्मण का क्या लक्षण है, संग्रह नहीं करना। तो ब्राह्मण कभी संग्रह नहीं करता, इसलिए जैसे हम देखते हैं ना कि शास्त्र में वर्णन आता है, जैसे रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम के पास एक ब्राह्मण गया और उन्होंने, भगवान राम हरेक को जितना मुंह मांगे उतना दान देते थे, एक को का कितना आपको गाय आदि चाहिए उसके हाथ में एक लकड़ का टुकड़ा दे कर जितना दूर फेंक सकते हो, उसके बीच में आने वाले जितना संपत्ति है गाय आदि है जो हीरे मोती आदि से जड़ित है वो सब आपको मिलेंगे। अभी कौन नहीं जोर से ट्राई करेगा फेंकने के लिए, उसने पूरा शक्ति लगाया, फेंका भगवान राम ने दिया। या फिर हम देखते हैं ना भागवत में पढ़ते हैं कि अलग अलग यज्ञ होते थे तो उनमें ब्राह्मणों को सोचते ना 60,000 गाय ब्राह्मणों को दान दी, बेचारा ब्राह्मण क्या करेगा, पत्नी के साथ तो झोपड़ी में रहता है, कुटिया में रहता है, 60,000 गाय कैसे मैनेज करेगा, तो ब्राह्मण रखता नहीं है। अभी आया तुरंत किसी को डोनेट कर दिया, क्योंकि ये रखना मीन्स मेंटेन करना, उसके पास मेंटेन करने में लगना मीन्स कृष्ण की सेवा के लिए टाइम कहाँ है। हम तो चीजों का भंडार भरते जाते हैं घरों में ना, और मेंटेन करने लगे रहते हैं, फिर कृष्ण के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए है रूप गोस्वामी ने कहा, क्या कहा, अत्याहार, अत्याहार मीन्स कलेक्टिंग मोर देन नेसेसरी, अनावश्यक संग्रह, क्योंकि जितना आप संग्रह करते हो उससे फिर आप लगे रहते हो उसको मेंटेन करने में, फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना भूल जाते हो, कृष्ण कॉन्शियस मेंटेन नहीं होती, खत्म होने लगती है। तो ये ब्राह्मणों का गुण, ये ब्राह्मणों का था। तो ये बेचारा भिक्षा देही करते करते आया, कुछ मिला ही नहीं, आया तो पत्नी ने, पत्नी बिल्कुल खड़ी थी दरवाजे में और उन्होंने उनकी क्लास लगा ली, डांटने लगी, आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, रोज तो गीता पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना कष्ट में उनको जीवन ये दे देना। तो उन्होंने जब पूछा और वो बच्चे अंदर गए और गीता में क्या क्या उन्होंने वो जो लगाया हुआ था उसको काटा भी उन्होंने, तो कहते आपने तो भेजा है, अभी दो बोरा इतना सारा सामान आपने भेजा है जो हम जो ये बच्चे लेके आए थे, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये सामान मैंने भेजा नहीं है। तो फिर बाद में उनको सारी चीजें पता चल जाती है कि ये सब चीजें किसने भेजी हैं, जगन्नाथ या कृष्ण और बलराम स्वयं आए थे। तो उनको कहने लगे कि हे देवी, आप बहुत भाग्यवान हो कि साक्षात कृष्ण बलराम को तुमने फीड भी किया, प्रसाद भी दिया, और क्या किया, उनको देखा भी और उनकी सेवा आदि की। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेम वाम्यम। हमें क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। हमें लगता है कि मेरी रक्षा मेरा बैंक बैलेंस कर सकता है, मेरी रक्षा मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहुत धन कमाएंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करेंगे तो वो मेरे सहारा बनेंगे, मेरी रक्षा मेरे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मेट्रो कार्ड पता नहीं कौन कौन से कार्ड है आजकल ये सब करेंगे। कई लोगों का देखो कार्ड से भरा रहता है जेब, और सब कुछ कार्ड में जीवन हो गया है, सब कुछ तो इतना टफ है, वो इतना निर्भर हो जाते हैं इन सब चीजों में। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर निर्भर होना खत्म हो जाता है। षडांग शरणागति, छह प्रकार के शरणागति में से एक ये है, आवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वासे पालन, कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और कृष्ण निश्चित मेरा पालन करेंगे। गाय को जब बेचा जाता है दूसरे को, तो गाय चिंता थोड़ी होती है, थोड़ी सोचती है कि अरे मुझे घास खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, आप जब यात्रा में आए हैं तो आपने चिंता तो किया था क्या, प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत थे ना, बिल्कुल फिक्स आपको ये था, विश्वास से पालन कि दामोदर प्रभु आपको पालन करेंगे, दो टाइम प्रसाद या तीन टाइम प्रसाद खिलाएंगे। आज तो उन्होंने हाथ कर दिए। तो इस प्रकार से हाँ ये फेथ होना चाहिए और हमेशा भगवान पर निर्भर होना चाहिए भक्तों की सहायता से। शास्त्र कहते हैं कैसे भगवान पर निर्भर होना चाहिए, हेल्प ऑफ डिवोटीज, भक्तों की सहायता से कृष्ण पर डिपेंड हो जाना। हाँ ये सीक्रेट है। जो गजेंद्र हाथी है वो भी गया था, समर छुट्टियां होती है ना, क्या कहते हैं उसको, समर वेकेशन। भागवतम में सब कुछ है जो आप डेली लाइफ में रेगुलर रूटीन में करते, सब कुछ है और इतना क्लासिकल है, मोर इतना अच्छा एंटरटेनमेंट के साथ प्रेजेंट किया है, जस्ट हमें उसमें डूबना है। तो ये जो गजेंद्र हाथी इतना पावरफुल हाथी था, आप कहेंगे कि कहाँ जगन्नाथपुरी लाए और कोई जगन्नाथ कथा नहीं हो रही है, मैं तो बैठा ही था रथ यात्रा के बारे में लेकर सारी चीजें की, रथ यात्रा कुरुक्षेत्र में गोपियाँ आदि कैसे मिलती है वगैरह सोच रहा था, वो चर्चा करूँगा लेकिन सोचा कि बाद में करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन। तो ये जो गजेंद्र हाथी है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि इतना पावरफुल था, जब ये चित्कार करता था कि गजेंद्र हाथी आ रहा है तो सिंह भी भाग के दूर भाग जाते थे कई किलोमीटर दूर, और ये गजेंद्र हाथी के साथ पूरी सेना थी उसकी। हाँ, कितने सारे उनकी वाइफ्स थी, कितने सारे बच्चे आदि थे, कितने फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, और ये भी समर वेकेशन के लिए निकले थे, जल क्रीड़ा करने के लिए, स्विमिंग करने जाते हैं ना, क्या है आजकल शहरों में तो वो मैं भूल गया, वाटर पार्क, हाँ वाटर पार्क ना, सही है, वाटर पार्क बनाते हैं। अभी अननेचुरल चीजें, प्लास्टिक के डब्बे लगाते रहते हैं, यहाँ से गिरो वहां उधर से निकलो, और अननेचुरल सा है। तो फिर यहाँ ये जो गजेंद्र हाथी है ये गया सारी अपनी सेना के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए, और मस्ती में था, पानी उड़ेल रहा था यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। तो फिर अचानक क्या हुआ, लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, भगवान कहते कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल के समय में काल के रूप में आता हूँ और विनाश करना शुरू करता हूँ, और हम सबके साथ हैं, हम भी गजेंद्र हाथी की तरह स्थिति है, बिल्कुल भूल गए हैं। टाइम टाइम बॉम्ब तो हमारे इसमें फिट किया गया है, जैसे जन्म लिया माँ के गर्भ से बाहर आए हम टाइम बॉम्ब से डर रहे हैं, नहीं अरे टाइम बम लगा रहे लोग, लेकिन भूल गए एक टाइम बम ऑलरेडी फिक्स है। हाँ, और वो जैसे जन्म लिया माँ के गर्भ से, वो टाइम बम लग के माँ ने बाहर भेजा है हमें, और भूल गए टाइम बम को। हाँ, वो घड़ी उसमें सेल डाला है और वो क्या होना, चार्जिंग एक दिन खत्म होने वाली है, रिचार्ज अलाउड नहीं है, रिचार्ज कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही है भगवान, हरे गजेंद्र हाथी बिल्कुल मग्न था, और हम भी हमारे जीवन में मग्न हो जाते हैं। अभी ये गीत इतना अच्छा है, इस गीत में भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं आदर एरा छेले स्वजन एरा कोले, हसिया काटिनु काल। आदर आदि के साथ स्वजन एर, अपनी जो स्वजन है माता पिता आदि के कोले मीन्स गोद में घूम रहा हो, हाँ कितना आनंद अनुभव कर रहा हो। हसिया काटिनु काल, हंसते हुए खेल, अभी जैसे बच्चे नाच गा रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, लाइव फिल्म देख सकते हैं हम। और फिर क्या होता है, जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागे लभाल। जनक और जननी, जनक मीन्स पिता और जननी मीन्स माता, माता पिता का जो प्रेम है उसमें इतना रममान हो गया उनके गोद में खेलते खेलते, तो ये जो जगत है मुझे क्या लगने लगा, भाल अच्छा लगने लगा। और वास्तव में कैसे लगना चाहिए, भक्तिनोद ठाकुर दूसरे गीत में कहते, भाल नाई लागे ये संसार, गोपीनाथ ये भाल अच्छा नहीं लग रहा ये जगत, हाँ विषम है, विष रूपी विषम स्थिति में मैं जल रहा हूं, भाल नाई लागे ये संसार। लेकिन यहाँ हाँ बचपन में हम जब स्नेह आदि से आसक्त हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये जगत इतना अच्छा लगने लगता है, भूल ही जाते हैं कि रिचार्ज खत्म होने वाला है। हाँ, या रोमिंग में है हम एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में, तो फिर वहाँ इतना मग्न था गजेंद्र हाथी, हाँ पत्नी बच्चे रिलेटिव आदि सबके साथ भूल गया, हाँ कि काल अभी आने वाला है। काल के रूप में कौन आया, मगरमच्छ। मगरमच्छ आकर उन्होंने, मगरमच्छ ने क्या किया, उनका पांव पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा छुट्टी नहीं है। उनके जो पुत्र आदि थे और उनके जो पत्नियां थी, उनके मित्र आदि थे, सगे संबंधी सब लगे हुए थे, कोई भी उनको खींच पा नहीं रहा था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, सब दूर भाग रहे थे, सब चले भी गए। तो फिर ये लगभग एक हजार साल देवताओं के या पृथ्वी के उस मगरमच्छ के साथ युद्ध में लगे रहे, और वो पावरफुल प्राणी था, वो खींच रहा था, ये भी खींच रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे कभी बाहर आ रहे थे। तो हम सोचते हैं कि मेरी रक्षा मेरे पारिवारिक लोग करेंगे, मेरी रक्षा मेरा धन करेगा, मेरी रक्षा मेरा बल करेगा, मेरा जो विद्या है भौतिक ज्ञान है ये मेरा रक्षा करेगा। नहीं, सदैव हमेशा हमेशा हमें इस भावना पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासे पालन, कृष्ण रक्षा करेंगे और कृष्ण मेरा पालन करेंगे, चाहे मैं जिस सिचुएशन में क्यों ना हो। तो इसी कारण से व्यक्ति कितने कष्टों को मोल लेता है, कितना दुख को मोल लेता है। तो फिर ये गजेंद्र हाथी का एक अच्छा एक गुण था कि पहले वो राजा इंद्रद्युम्न थे जिसमें वो रोज भगवान की स्तुतियां करते थे, वैरायटीज ऑफ स्तव स्तुतियां अष्टकम प्रेयर्स आदि को गाते रहते थे कृष्ण के आनंद के लिए, और कृष्ण उसको सुनकर आनंद का अनुभव करते थे, और वो जो प्रेयर्स हैं वो जो स्तुतियां हैं वो स्तव हैं राजा इंद्रद्युम्न के टंग पर हमेशा थे। वो हाथी के शरीर में भी चले गए, तब जब ये सिचुएशन आया कष्ट की स्थिति आई तब उनकी जीवा से क्या निकला, नारायणम अखिल गुरु, भगवान नमस्ते, हे नारायण अखिल जगत के गुरु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, कैसे प्रणाम किया उन्होंने, वहां सामने देखा जलाशय में एक फ्लावर है, लोटस फ्लावर, कमल का फूल, अपने सूंड में उन्होंने उठाया, बल्कि पांव में क्या लगा हुआ था, काल रूपी वो क्रोकोडाइल है, वो पकड़ रहा था। लेकिन इतनी सारी सिचुएशन में होकर भी आप सोचो फिर किस मूड से, किस एटीट्यूड और किस लगन के साथ, कितने तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ उनके हृदय से ये भगवान की ले पुकार निकली होगी, है ना। जब हम बहुत अच्छे फैसिलिटी में होते हैं तो नहीं होता कृष्ण के लिए, वो स्ट्रांग रोदन नहीं होता, हम रो नहीं सकते कृष्ण के लिए। और भक्ति का मतलब ही है कृष्ण के लिए केवल रोना सीखना। और इसलिए ये जो जगन्नाथपुरी है इसका एक नाम ये भी है क्रंदन क्षेत्र, क्योंकि यहाँ दोनों लोग रो रहे हैं, श्रीमती राधिका भी रो रही है और स्वयं जगन्नाथ भी रो रहे हैं, इसलिए इसको विप्रलंबक क्षेत्र भी कहा जाता है। विप्रलंबक क्षेत्र का मतलब है कि राधा रानी रो रही है, मतलब राधा रानी कौन है, यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, कृष्ण जब कृष्ण के लिए रोते हैं वो चैतन्य महाप्रभु है, और जब वही कृष्ण जगन्नाथ जब श्रीमती राधिका के लिए रोते हैं तो वो कौन है, लॉर्ड जगन्नाथ है। उनकी ये दयनीय स्थिति, दयनीय तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कृष्ण का ये जो रूप है, स्वरूप आदि है जो हमें जगन्नाथ के रूप में दिखता है, ये केवल अपने भक्त के विरह की अनुभूति है, भक्त के सेपरेशन में कृष्ण जब रो उठता है उनका हृदय तो उनका स्वरूप बदल जाता है। और वही भक्त जब कृष्ण के लिए रोता है, श्रीमती राधा रानी का भाव चैतन्य महाप्रभु वो बनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जगन्नाथपुरी है ये विप्रलंबक क्षेत्र है, माधुर्य ऐश्वर्य मिलित क्षेत्र दूसरा एक नाम है, माधुर्य और ऐश्वर्य मिलित क्षेत्र, कि यहाँ कृष्ण की मधुरता और कृष्ण का ऐश्वर्य दोनों चीजें हैं, किसी और धाम में नहीं मिलेगा आपको, ये दोनों चीजें इस धाम में है। तो ये क्रंदन क्षेत्र है, सेपरेशन विरह किससे, कृष्ण से। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि भगवत भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए जगन्नाथपुरी सर्वोत्कृष्ट स्थान है, क्योंकि जो साधक है उसको यही सीखना है कि कैसे मैं अधिक से अधिक कृष्ण के लिए रो, अपना जो रोदन और भक्ति योग का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करते हुए कहते हैं, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति योग हय केवल क्रंदन। भक्ति योग क्या है, धन है, और भक्ति योग है क्या, भक्ति योग है कृष्ण के लिए रोना सीखना बस। भौतिक जगत में हम बचपन से लेकर शरीर त्यागने तक रो रहे हैं, हम बचपन से माँ के दूध के लिए रोते हैं, हम थोड़ी सी रोटी आदि के लिए रोते हैं, बड़े हो जाते हैं तो चॉकलेट आइसक्रीम कपड़े शूज कितनी चीज़ों के लिए रोते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो और कई चीज़ों के लिए रोते हैं, नौकरी के लिए, इनको अनुभव है, नौकरी के लिए रोते हैं, तो ऐसा रोना धोना हमेशा चल रहा है। फिर बच्चे हो जाते तभी भी रोते हैं, वो सुनते नहीं हैं, फिर उनका कुछ वो भी जॉबलेस है, कुछ सेटल नहीं हो रहे, तो ये रोना कंटिन्यूसली है। और जब बुढ़ापा आता है तो नेचुरली रोता है। एक डिवोटी कहता है कि व्यक्ति जब स्वयं ही तपस्या का जीवन नहीं स्वीकारता, वैराग्य का जीवन नहीं धारण करता, भगवत भक्ति में नहीं लगता और वो हेडशेव नहीं करता अपना, तो नेचर क्या करती है, नेचुरली उसका हेड शो करती है। बुढ़ापे में क्या है, नेचुरली हेड शो हो जाता है, बाल स्थानों में रहते नहीं है। तो इस प्रकार से हम रो रहे हैं, लेकिन कृष्ण के अलावा, कृष्ण भक्तों के संग के अलावा, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर सुबह जो हमने गीत गाया था उसमें क्या कर रहे थे, हंस थोड़ी रहे थे, बहुत अच्छा हुआ ये भक्तों का संग छूट गया, इतने सारा टॉलरेट करना पड़ता है ना उनकी बातों को, उनके कार्यकलापों को, उनके आदेशों को, है ना, उनके रूल्स रेगुलेशंस को। अच्छा हुआ कब ये झंझट दूर हो गया। हाँ ऐसे नहीं, भक्ति रहो। जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो रो रहे थे, रियली रो रहे थे। तो इस प्रकार से हम कृष्ण के अलावा बाकी सब चीजों के लिए रो रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें वास्तव में जगन्नाथ पुरी आते हैं तो केवल यही सीख के जाना चाहिए। हाँ, कि रोना कृष्ण के लिए। हाँ, जब हम कृष्ण देखते कि रियली रो रहा है तो कृष्ण हमें पकड़ते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, हाँ, तो चाहे हमारे उससे साथ संबंध हो या ना हो, दया की भावना आते हैं, हम कुछ खिलाते पिलाते गोद में उठाते पूछते हैं। वैसे ही कृष्णा, कृष्णा परम पिता हैं, जगन्नाथ देव। तो जब इस मोड़ को हम लेके जाएं, हर समय दो चीजों के लिए रोना चाहिए। एक रोना क्या है, कृष्ण के लिए, और दूसरा रोना क्या है, अपनी दयनीय स्थिति के लिए। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, अमर जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य रलेश, कि मेरा जीवन सदैव पाप कार्यों में मैं लगा रहता हूं, कोई पुण्य का लेश नहीं है। तो इस प्रकार की मूड को लेकर हमें अपने हृदय में क्रंदन करना चाहिए। हमारा जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य रलेश। नेक्स्ट मुझे तो याद नहीं है, लेकिन ये अमेजिंग ये है, सॉन्ग नंबर 8। परेरा उद्वेग दिया छी जेकर त दिया छी जीवेरा क्लेश, निज सुख लागे पापे नाही डरी, दया ही न स्वार्थ पर सुखे दुखी सदा मिथ्या बाशी, पर दुख सुख कर आशेष कामना रुदि माझे मोर रुदि दंभ परायन। तो कहते कि निज सुख लागे पापे नाही डरी, दया ही न स्वार्थ पर। ये सॉन्ग क्रंदन है, अपनी सिचुएशन में रो, और दूसरा क्या है, कृष्ण के लिए रो। तो जब पहले ये भावना विकसित होगी तभी वास्तव में आप रियली कृष्ण के लिए हृदय में वो भावना विकसित कर पाएंगे। इसलिए तो महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करते थे गरुड़ जी के पास, क्यों जब गरुड़ जी के पास दर्शन करते थे चैतन्य महाप्रभु, बताइए। हाँ, वो भी एक कारण है। और क्या कारण है? एक तो कारण हम सुनते हैं जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रकट किया। भक्ति सिद्धांत महाराज को उनके डिसाइपल ने पूछा कि आप गरुड़ जी के पास खड़े होकर क्यों दर्शन करते हो? तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ तुम मुझे दृष्टिपात तो नहीं डालेंगे, लेकिन वो अपने भक्तों को देखने में आनंद देते हैं, गरुड़ को। तो जब मैं उनके चरणों में खड़ा हूँ तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी दृष्टिपात करेंगे। तो ये इफेक्ट है, ग्लोरी है भक्तों के चरणों का आश्रय लेने का। और फिर दूसरा क्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधिका की भावना में है, तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देखते थे, तो वहां से जगन्नाथ सुभद्रा और बलदेव नहीं दिखाई देते, केवल कौन दिखाई देते हैं, जगन्नाथ। तो राधा रानी केवल जगन्नाथ को देखना चाहती हैं, क्योंकि वो जो चैतन्य महाप्रभु है राधा की भाव में है, और वो उस मोड में केवल जगन्नाथ को देखना चाहते हैं। और कैसे हैं, श्याम सुंदर रूप में देखते हैं। तो इसी कारण से चैतन्य महापुरुष सदैव वहां से देखते थे, कोई और डिस्टर्बेंस नहीं, उस मोड को आस्वादन करने के लिए। एक प्रमुख कारण था चैतन्य महाप्रभु का वहां से देखने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब देख रहे थे, तो हमने बीच में भी सुना था कि उस समय बहुत भीड़ था, है कि नहीं? एक दिन क्या हुआ, बहुत भीड़ हो गया दर्शन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने के लिए जाते थे तो उनके साथ दो भक्त जाते थे, एक गोविंद और दूसरा काशीश्वर पंडित। काशीश्वर पंडित बहुत 7 फुट के हाइटेड लंबे चौड़े भक्त थे, उनके गुरु भाई थे, और उतना बलवान शरीर था कि भीड़ को एक हाथ से 10-15 लोगों को साइड में कर देते। उनका काम ही था आगे चलना, ऐसे करना, जस्ट इधर उधर भगाओ, महाप्रभु आ रहे हैं, महाप्रभु आ रहे हैं, सब क्राउड को हटाना, लेकिन एक दिन नहीं आए, गोविंद अकेला था। तो चैतन्य महाप्रभु गए गरुड़ा के पास, गरुड़ स्तंभ को उन्होंने पकड़ा। और वैसे गरुड़ स्तंभ बहुत पावरफुल है, आपकी डिजीज सारी खत्म हो जाती है जब आप जितना उसका आलिंगन करते हो, गरुड़ स्तंभ का शास्त्र कहते हैं। हाँ, तो गरुड़ स्तंभ कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो महाप्रभु उसका स्पर्श करके खड़े रहते थे। तो एक दिन खड़े हो गए भीड़ में और सब लोग जल्लोश में, हाँ, भीड़ में जब दर्शन खुलता है तो देखने के लिए चिल्लाते, लालायित होते, उठते हैं। तो उस समय क्या हुआ, महाप्रभु के सामने लाखों लाखों लोग देख रहे थे और फिर एक उड़िया स्त्री, उड़िया जो माता जी हैं, उड़िया एक स्त्री भिड़े दर्शन ना पाइया, देखिया गरुड़ेर चढ़े देखे प्रभुर स्कंदे पद दिया। तो वो गरुड़ के ऊपर चढ़ गई और एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कंधे में रखा और एक हाथ से गरुड़ जी को पकड़ा ऊपर। और किसको देख रही है, जगन्नाथ को। क्या अफेक्शन, क्या लवले होगा, आप सोच सकते हैं कितना आकर्षण होगा। तो फिर ऐसा वो देख रही थी, मग्न हो गई थी। महाप्रभु कुछ कंप्लेन नहीं किया महाप्रभु ने, महाप्रभु ने नहीं कहा मैं महाप्रभु हूँ और ये मेरे कंधे में पाँव देकर खड़ी है, इस औरत को कुछ एटिकेट है कि नहीं है, हाँ, ये सब चीजें महाप्रभु ने नहीं बोली। महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूँ, एक स्त्री मेरे पाँव पर पाँव देकर खड़ी कैसी है। महाप्रभु ने कहा कि कितना इसका कृष्ण के लिए आकर्षण है, कितना प्रेम है। महाप्रभु तो अपना गुरु के रूप में उसको देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर वो खड़े थे तो उनके सेक्रेटरी गोविंद ने देखा और उसको डांटने लगा, नीचे से उतर, नीचे नीचे उतरो। तो महाप्रभु कहते आदिवासी, तुम्हें एटिकेट सही कि नहीं बोलने के। महाप्रभु ने आदिवाशा ये शब्द यूज किया, आदिवासी हो तुम, आदिवाशा यही श्री रे ना करे वर्जन, करो को यथेष्ट जगन्नाथ दर्शन। अरे इस स्त्री को नीचे मत लो आदिवासी, इसको करने दो ना दर्शन। यथेष्ट मतलब पूर्ण तृप्त होकर वो जगन्नाथ का दर्शन करते रहे, हाँ देखते रहे, कंटिन्यूसली इसको करने दो। आस्ते व्यस्ते से नारे भूमि ते ना मिला, महाप्रभु रे देखी चार चरण वंदिला। तो जब ये डांट लगाई इस बेचारे सेक्रेटरी ने, हाँ, तो वो बेचारी उतर गई और उसको तब पता चला कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर खड़ी थी, कंधे के ऊपर आई, उनके चरणों को स्पर्श किया और फिर महाप्रभु उसकी स्तुति करने लगे। महाप्रभु कहते हैं, तार आरती देखी प्रभु कहे ते लागिला, एत आरती जगन्नाथ मोरे नाई दिला। महाप्रभु ने कहा कितना इसके अंदर लालसा है कृष्ण को देखने की, जगन्नाथ को, कि इतना उसके अंदर ईगरनेस है कि जगन्नाथ ने मेरे हृदय में भी इतना ईगरनेस या लालसा नहीं दी उनका दर्शन करने के लिए। हम तो दर्शन के लिए जाते आए हैं तो जाते हैं, है कि नहीं, मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब कोई इच्छा ही नहीं है, जस्ट एक होता है ना पूर्ति करना, किसी नियम का पालन करना, वो करने के लिए हम जाते हैं। हाँ, तो महाप्रभु कहते हैं, जगन्नाथे आविष्ट यहार तनु मन प्राणे मोरस कंदे पद दिया छे तहां नहीं जाने। इसका मन, इसका हृदय, इसका शरीर कृष्ण में आविष्ट हो गया है जगन्नाथ को देखने के लिए। उसको इतना भी पता नहीं चला कि ये मेरे ऊपर खड़ी है। महाप्रभु कहते हैं, अहो भाग्यवती यही वंद यहार पाए, ये तो भाग्यवती स्त्री है, मैं इसके चरणों का वंदन करता हूँ, इसके चरणों में गिर जाना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ प्रसादे ऐसे आरती अमार नहार वहाय, कि ये स्त्री मेरे ऊपर कृपा करेगी, जो इसके हृदय में है कृष्ण को देखने के लिए आकर्षण, वो आकर्षण मेरे हृदय में आ जाए। कौन कह रहे हैं, महाप्रभु सन्यासी, वो नहीं सोच रहे कि आ रही है स्त्री कोई निम्न है। गुरु का मतलब क्या है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। गुरु कोई भी हो सकता है जिसके अंदर कृष्ण के लिए प्रगाढ़ लालसा है, फिर चाहे वो वर्णाश्रम मैटर नहीं करता, क्या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, आपसे जो भी उन्नत है कृष्ण भक्ति में वो आपके लिए गुरु है। हाँ, तो महाप्रभु कहते हैं, कि मैं इसके चरणों की वंदना करता हूं, गिरना चाहता हूं इसके चरणों में, कि इसके हृदय में जो आकर्षण है कृष्ण के लिए आरती है, आरती का मतलब ही है बहुत गहरा आकर्षण, वो मेरे अंदर आ जाए, मैं इसको प्रार्थना करता हूँ, इसकी मेरे ऊपर कृपा हो जाए, तो जो इसके इसके हृदय में जो आकर्षण है कृष्ण के लिए वो मेरे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगा, ये भावना हमें लेनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से ये मूड है श्री चैतन्य महाप्रभु का, और इस मूड से मूड को हमें अप्रोच करना चाहिए, इस मूड को धारण करते हुए डिवोटीज को अप्रोच करना चाहिए। हाँ, तो जिस प्रकार से इसी प्रकार से हमें जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते रहना चाहिए। जगन्नाथपुरी में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है जगन्नाथ को आंखें भर भर के देखना, कैसे देखना, आंखें ऐसे भर भर के पीना आंखों से, और दूसरा है उनका कृष्ण प्रसाद कंठ तक ग्रहण करना, ये दो चीज़ों में परफेक्शन है। जगन्नाथपुरी आओ केवल इन दो चीज़ों के लिए आओ यहाँ, हाँ कुछ और नहीं करने की आवश्यकता, कि यहाँ आकर भगवान जगन्नाथ को देखो अधिक से अधिक, इसलिए तो उनकी क्या है, क्या है आंखें, बड़ी बड़ी आंखें हैं। हाँ, लेकिन हम बड़ी बड़ी आंखों को कैसे देख रहे हैं, छोटी छोटी आंखों से, हम कैसे समाएंगे हमारे आंखों में, समा सकते हैं क्या, इम्पॉसिबल। तो उस आंखों में हमें अंजन लगाना पड़ेगा, और वो अंजन क्या है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो महान प्रेमी भक्त है वो सदैव अपने हृदय में कृष्ण को देखते हैं श्याम सुंदर रूप में। ये नेत्रों के लिए नेत्र उत्सव है, आज नेत्र उत्सव है, चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ में थे तो उनको पता चला कि आज जगन्नाथ के दर्शन है, महाप्रभु दौड़कर आए अलारनाथ से, ऐसे नहीं कि गाड़ी से आए, दौड़कर आए, और उन्होंने अपने भक्त का हाथ पकड़ा, चैतन्य चरितमृत में आता, हाथ पकड़ के खींच के ले गए, चलो दौड़ते हुए ले गए, कहा गर्भगृह में अंदर, कि आज नेत्र उत्सव है, आज यही तो परानाथ पायनो जहां लागे मदन दहने झूरे गेनो, कि मैं इनको तो देखना चाहता हूं जिनके लिए मेरा हृदय लालायित हो उठा था। तो ऐसे महाप्रभु ने कहा यही तो परानाथ पायनो, यही तो मेरे प्राण के नाथ है जिनको मैं देखने के लिए दौड़ के आया हूँ अलारनाथ से। अब उस भक्त का हाथ पकड़कर और भी डिवोटीज को लेकर वो भागे पहला दर्शन करने के लिए जगन्नाथ का सुबह के समय में, और गर्भगृह में जाके खड़े हो गए। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि खड़े होकर सुबह से शाम तक महाप्रभु हिले नहीं वहां से, केवल क्या करते जा रहे थे, जगन्नाथ को देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, उनकी जो प्यास है वो बुझी नहीं, खत्म नहीं हुई। हाँ, यही ब्रजवासियों का मूड है। ब्रजवासी होना मीन्स क्या होना, जस्ट कपड़े आदि ब्रजवासियों की तरह से पहनना इज नॉट ब्रजवासी। ब्रजवासी मीन्स उस चेतना को, उस भावना को डालना। ब्रजवासी कभी संतुष्ट नहीं होते कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण की सेवा आदि करने के लिए। ऐसे हुआ कि मदर यशोदा बहुत क्या कहते हैं उसको, जमाई दे रही थी, बहुत हो गया अभी ना कृष्ण की सेवा, अभी आराम करती हूँ, नहीं, नो सेटिस्फैक्शन, सदैव लगी हुई है। और इसी को कीर्तनीय सदाहरि कहते हैं। कीर्तनीय सदाहरि ये नहीं कि ताल मृदंग 24 आवर्स कीर्तन, कीर्तनीय सदाहरि मीन्स 24 घंटे आप क्या कर रहे हो, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हो, ये भी कीर्तनीय सदाहरि है। तो ये मूल चैतन्य महाप्रभु का था, और महाप्रभु को भी शाम को पता चलता था कि अरे शाम हो गई है, तो कोई डिवोटी उनको ले आता था। हाँ, कभी कभी महाप्रभु गंभीरा से दौड़ते हुए आ जाते थे, और सिम्मा द्वार में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका हाथ पकड़कर कहते थे कि आप मुझे श्याम सुंदर कृष्ण जो यशोदा नंदन है त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं, वो कहाँ 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 उनको देखो, मैं मुझे दिखा सकते हो, ऐसा महाप्रभु कहते थे सिक्योरिटी गार्ड को। हम कहते हाँ चलो चलो मेरे साथ चलो, चैतन्य चरितमृत में सिक्योरिटी गार्ड को पड़ी चका गया है, तो वो ले जाते थे और कहते थे देखो यही है यशोदा नंदन, यही है श्याम सुंदर। तो ये इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का तीव्र अनुराग था। तो वास्तव में चैतन्य चरितमृत आपके लिए लाइव हो जाता है, जब आप कहाँ बैठते हो जगन्नाथपुरी में बैठते हो और चैतन्य चरितमृत को रिसाइट करते हो, पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से दौड़ रहे हैं पूरी जगन्नाथपुरी में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग भक्तों के संग में। हाँ, तो आपके आंखों देखा हाल, क्या कहते हैं उसको, आंखों देखा, लाइव टेलीकास्ट इंग्लिश में, लाइव टेलीकास्ट सीसी को आपको देखना है अंत लीला तो जगन्नाथपुरी है। और अभी भी वो सारी लीला स्थलियाँ हैं, अभी भी वो सारी चीज़ें हैं, महाप्रभु का जो बेड़ा कीर्तन है, सिम्मद्वार में गमन आदि है, गंभीरा, चटक पर्वत, इन सब चीज़ों में। तो धाम में आते हैं तो कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की लीला को और हमारी प्रकाश हमें मिलता है, और फिर उनको उस चलचित्र को हम अपने हृदय में धारण करके वापस ले जाते हैं। इसलिए धाम में आके इन चीज़ों में अधिक समय बिताना चाहिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, चैतन्य महाप्रभु के, जगन्नाथपुरी धाम के।